ओम शांति। फिर से भाग्यवान आत्माओं को परमात्म पालना मिली, लगा सभी को ऐसा? बाबा वाइब्रेशंस देखकर हमें बहुत सुख दे देते हैं और अच्छी अच्छी प्रेरणाएं, उनकी गाइडेंस भी हमारे लिए पालना है। चित्त शांत हो जाता है सभी माताओं का, बाबा को देखकर मुरली सुनकर चित्त शांत हो जाता है ना? कम से कम एक बार सभी आनंद से भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं, मन में कुछ करने की उमंग आ जाती है। बाबा की इतनी अच्छी लहर होती है जब बाबा बोलता है, कितना सहज भाव से बोलता है, कितनी साधारणता से बोलता है, लैंग्वेज भी सिंपल, सब समझ लें। तो कल बाबा ने क्या होमवर्क दिया? एक साल के लिए काम दे दिया, इतना लंबा काम अब तक नहीं दिया था। फरिश्ता भव, ज्वालामुखी योग उसका साधन, अपने योग को पावरफुल बनाएं, लाइट हाउस माइट हाउस का बनाएं, तो उससे हमारे पुराने संस्कार भी स्वतः ही जलकर नष्ट हो जाएंगे। याद है ना कल बाबा ने कहा, पुराना वर्ष बीत रहा है तो साथ में पुराने संस्कार भी, उनको विदाई दे दो। वो कहने से तो विदाई नहीं होगी, कहने का एक सुंदर तरीका भी बाबा सिखाते हैं। कल भी सिखाया कि ये संस्कार मेरे संस्कार नहीं है। मान लो किसी को क्रोध ही आता है, आत्मा क्रोध के वश होती जाती है और आखिर बोलने लगते हैं, भाई ये तो मेरी नेचर हो गई है, मेरा संस्कार ये तो जाता नहीं है। ये संकल्प गलत है या ठीक? मेरा ये संस्कार जाता नहीं, नहीं, संकल्प करें ये मेरा संस्कार है ही नहीं। बहुत मदद मिल जाएगी इससे। देखिए हमारे पास शक्ति है, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा इस सीजन की पहली मुरली का सबसे सुंदर महावाक्य, तुम्हारे पास शक्ति है सब कुछ करने की। हम चाहें कि मुझे ये संस्कार बदलना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बदल ना पाएं। ठीक है बात या नहीं? बदलेगा, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। तो बाबा ने हमें ज्वालामुखी योग, जिसको पावरफुल योग कहते हैं, इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं, इसको फिर से दृढ़ता पूर्वक तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इसके बिना न तो विकर्म विनाश होंगे, न विकार नष्ट होंगे, न संस्कार बदलेंगे। संस्कार स्वतः ही बदल जाते हैं, एक तो पांच स्वरूपों के अभ्यास से, दूसरा इस योग की अग्नि से। ये ज्वाला रूप, ज्वालामुखी, बाबा ने इसको नाम इसीलिए दिया ज्वाला की तरह, जब योग हमारा अग्नि बन जाए जिसमें सब गंदगी नष्ट होने लगे जलकर, ऐसा योग जिसमें, जिसका अर्थ है, बाबा ने तीन शब्द बोले कल भी, लाइट हाउस माइट हाउस पावरफुल योग, अर्थात जब हम एक संकल्प में स्थित होकर बाबा से शक्तियां प्राप्त करते ही रहें थोड़ा लंबा काल, ये नहीं एक दो सेकंड किया, एक मिनट, फिर पांच मिनट, फिर दस मिनट, ये लंबा काल हो गया बीज रूप के लिए, फिर आधा घंटा, इसमें बहुत कुछ ठीक हो जाता है स्वतः ही, इससे ही हम फरिश्ते बन जाते हैं। बाबा ने हम सभी को नए वर्ष के लिए एक और अच्छा सा काम दिया, कैसी भावनाएं हो सबके लिए? शुभ भावनाएं। और भी कुछ कहा? सहयोग, स्नेह और सहयोग, ये तीन चीजें हम याद रखेंगे। हम अपने ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के सहयोगी हैं। किसी को कोई समस्या आती है, किसी की स्थिति डाउन होने लगी, कोई और बात जीवन में आ गई, हम क्या करेंगे? सहयोग देंगे। शुभ भावना रखना, सहयोग देना, स्नेह होना, तीनों जुड़े हुए हैं ना? जहाँ स्नेह और शुभ भावनाएं हैं, जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग है, और सहयोग ही शुभ भावना है। इन चीजों पर भी हम ध्यान देंगे बहुत। तो बाबा ने हम सभी को लास्ट वरदान क्या दिया? संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट रहो और करो। ये बहुत सुंदर धारणा है ना जीवन की। परिवारों में भी देख लें, एक माँ सभी को यदि संतुष्ट करती है तो उस घर में वातावरण कितना सुंदर होगा, और जहाँ एक दूसरे को संतुष्ट नहीं किया जाता वहाँ वातावरण कैसा टकराव का होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो हम एक दूसरे को संतुष्ट करना लक्ष्य बना लें। संतुष्ट करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, अपना थोड़ा त्याग भी करना पड़ सकता है। मैं माताओं का ही एक उदाहरण दूं, आपका खाना पीना पूरा हो गया, 2 बज गए दिन के, कोई अचानक मेहमान आ गया, आपको नींद भी आ रही है, थक गए हैं आप, उसे संतुष्ट करने के लिए नींद भी छोड़नी पड़ेगी, थकान को भूलना पड़ेगा, करेंगे या नहीं? या आते ही कह देंगे हम थक गए अब बिना बताए क्यों आए हो, जाओ वापस, कहेंगे तो नहीं ना? या प्यार से बैठा तो ले लेंगे ना, अनुमने ढंग से व्यवहार करें तो उसको फील तो होगा ना कि भारी पड़ गए आज हम, तो संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट करने का संकल्प ही बहुत सुंदर संकल्प है, राजाई संकल्प है ये, हम इसे समझ लें। राजाई जो सफल राजा हुए हैं द्वापर युग के बाद भी, उनका लक्ष्य होता था हमारी संपूर्ण प्रजा सुखी हो, सब खुश रहें। राजा वेश बदल कर रात को चक्कर लगाते थे, मेरे राज में कोई दुखी तो नहीं, कोई रोता तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोया है। देखिए ये थे सच्चे सच्चे राजा, माता पिता, आजकल के राजा जैसे नहीं, हमने खाया सबने खाया, आजकल के राजाओं की ये नीति है ना। तो हम सब कम से कम 3 युगों के लिए अपने अंदर राजाई संस्कार भर रहे हैं, पालना का संस्कार, सबको संतुष्ट करने का संस्कार, और उससे ही हम संतुष्ट होते हैं। हम दूसरे को संतुष्ट करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है, हम स्वयं संतुष्ट होते हैं तो दूसरों को संतुष्ट करने की कला सीख जाते हैं। अब हम मुख्य बात पर आ जाएं, जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, कौन सा? फरिश्ता बनना है, 1 साल का दिया है। 2 बहुत अच्छी बातें कही हैं उसके पीछे, आपने नोट की हो, ध्यान दिया हो, हर एक अपने अंदर डेट फिक्स करे, मुझे इतने समय में ये लक्ष्य पाना है। ये बहुत सुंदर बात है। और डेट फिक्स करने के साथ क्या करना पड़ता है दूसरा? प्लानिंग। डेट तो फिक्स कर दी हो पर प्लानिंग कोई ना हो तो कुछ नहीं होगा। आप में से तो बहुतों को नहीं पता, हम देखते थे कोई मकान बनता था यज्ञ में, सुखधाम बना, सुखधाम है ना, तब यज्ञ बहुत छोटा था तो कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा स्लो चलता है, तो दादी क्या करती थी, डेट दे देती थी, इस डेट को दादी मकान की ओपनिंग करेगी, बनाओ, तो सबकी स्पीड डबल हो जाती थी, और हफ्ता 10 दिन पहले रात दिन लग के भी लोग काम पूरा कर देते थे। बाबा कहा करते अव्यक्त में, जब तक डेट फिक्स नहीं की तब तक परिपक्वता नहीं आती, स्पीड ही तब बढ़ती है जब हम डेट फिक्स करें। मेरे को इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, इसलिए मुझे ये बात बहुत प्रिय लगती है। बाबा ये भी कहा करते थे, प्रतिज्ञा करो तो परिपक्वता आए, मैच्योरिटी आएगी, दृढ़ता आएगी। तो हम उन दिनों करते थे, क्या करते थे कि एक हफ्ते में हमें अपना योग का चार्ट इतने तक पहुंचाना है, उसके पीछे भी दृढ़ता, रोज इतना करना है, जब तक नहीं होगा सोएंगे नहीं, करके ही सोएंगे। बहुत दिन तक मैंने किया तो बहुत अच्छे अनुभव हुए उसके, तो बाबा की बहुत अच्छी मदद हमें प्राप्त होने लगते, ये हिम्मत होती है ना हमारी, तो हम ध्यान देंगे। जो कुछ हम करना चाहते हैं जीवन में उसके लिए डेट फिक्स करें, प्रतिज्ञा करें, एक सुंदर प्लानिंग करें। प्लानिंग की बहुत जरूरत है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, मैं अपने से पूछता हूँ कि बाबा ने हमें एक साल के लिए ये होमवर्क दिया, क्या हमारे अंदर ये करने की सच्ची इच्छा है? मैं हाथ नहीं उठवाता, बाबा के आगे सभी हाथ उठा देते हैं। बाबा ने पूछा नए साल का प्लानिंग किस किस ने किया, सभी माताएं हाथ उठा रही थी। बाबा ने पूछा टीचर दो दो हाथ उठाओ, तो माताएं तीन तीन उठा रही थी। सब देख देख हंस रहे थे कि माताएं देखती हैं सब उठा रहे हैं, हम क्यों न उठाएं? पता नहीं बाबा क्या पूछ रहा है, हाथ तो उठा दें। तो सभी अपने से पूछें, सचमुच हम फरिश्ते स्वरूप के सुंदर अनुभव करना चाहते हैं? जो चाहते हैं उनके लिए हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। मेरे सहित सबको करना है और फाउंडेशन हो जाएगा हमारा जनवरी का मास, पहला पहला मास, उसमें भी बहुत अच्छे अनुभव हम करें 18 जनवरी तक। क्या है फरिश्ता स्वरूप? बिल्कुल आज इस बात को क्लियर जान लेंगे। आत्मा इस शरीर में बैठी हुई निरंतर जो कुछ सोचती है, हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस, सहज भाषा में संकल्पों की किरणें पूरे शरीर में निरंतर फैलती रहती हैं, निरंतर, और यही संकल्पों की किरणें सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमारे शरीर में बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश का शरीर भी है। इस शरीर को इसलिए लाइफ एनर्जी कहते हैं। वो शरीर अगर हमारे शरीर के अंदर न हो तो आत्मा और शरीर के बीच संबंध नहीं हो सकता, इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये लाइफ एनर्जी है, ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शनों में, शास्त्रों में एक ये भी मान्यता है कि आत्मा शरीर में सर्वव्यापी है, व्यापक है, पूरे शरीर में है। कईयों को अनुभव हुआ देह छोड़ा तो जैसे आत्मा पैरों से निकल रही ऊपर को, हाथों से निकल रही, तो आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर, लाइफ एनर्जी, वो छोड़ने लगती है उस अंग को। तो हम दो शरीरों में बैठे हैं, एक स्थूल, दूसरा इसके अंदर सूक्ष्म प्रकाश का। हम अपने इस शरीर को देखा करें, मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूँ। अभी फीलिंग करें सभी, जैसे हमारा स्थूल शरीर हमसे अलग हो गया और मैं चमकती हुई मणि प्रकाश के शरीर में रह गई, मेरे अंग अंग से लाइट फैल रही है, ये हमारा फरिश्ता स्वरूप है। इसको हमें बढ़ाना है, अपने इस स्वरूप को बार बार देखना है, मैं ये हूँ। तो जैसे स्थूल शरीर हमसे हट गया, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, और इसको स्पष्ट देख ले, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहित बाहर जाती है, अकेली निराकार आत्मा नहीं। जब से आत्मा परम धाम से नीचे आई, आते ही संकल्प चले, सूक्ष्म शरीर बन गया, उसके बाद पूरा चक्र में देह छोड़े और लिए आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित रही, गर्भ में आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित जाती है, इसलिए पिछले शरीर का बहुत कुछ नए शरीर में भी चला जाता है। आपने कहानियां सुनी हो, किसी को सिर पे लाठी मारी, उसकी मृत्यु हुई, अगले जन्म में उसके सिर में वहां थोड़ा सा गड्ढा था, पूर्व जन्म का उसने उसको याद था, बताया मेरी मृत्यु ऐसे हुई थी, डॉक्टरों ने चेक किया तो देखा उसके सिर पर उसका निशान नए शरीर में भी है। देखो शरीर तो वो खत्म हो गया था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में रह गया जो अगले शरीर में भी निर्मित हो गया। तो ये बड़ी सूक्ष्म गति है, हम सब सूक्ष्म शरीर के साथ 5000 साल की यात्रा करते आए हैं, ठीक है। फरिश्ते की बाबा ने एक सुंदर डेफिनेशन दी है, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सुना है ना सभी ने, और डबल लाइट का अर्थ भी डबल, एक अर्थ है मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का, जिसकी हमने चर्चा की। दूसरी परिभाषा है मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं हमें फरिश्ते स्वरूप के भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करने हैं, उसके लिए हमें कुछ अपनी धारणाएं भी अपनानी है जीवन में, और एक साल की सुंदर प्लानिंग भी करनी है, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा ने तो पिछली बार कह दिया था कोई पूछे तुम कौन हो, और इस बार कहा कोई पूछे तुम कौन हो, फरिश्ता हूँ, दोनों एक सी बात हो गई, सब जुड़ा हुआ है। हम इन सबको अलग अलग ना समझ लें कि बाबा तो हर बार नई नई बात बताता है क्या क्या करें, ये सब एक ही है, ज्वालामुखी स्वरूप तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा ही होगा, और अभ्यास करते करते हम फरिश्ते बन जाएंगे, यही हमारी बाप समान स्थिति भी होगी। मुझे याद आ गया बाबा ब्रह्मा यहाँ आंगन में घूमते थे, ये आंगन है ना हमारा, अनेकों को चलते फिरते ऐसे दिखते थे, दो लोग दो चीजों का लोग वर्णन करते थे, हम तो तब बहुत छोटे थे, हमें इन चीजों का ज्यादा पता नहीं था, जो उन दिनों के पुराने थे वो बताते थे बाबा ऐसा लगता है धरती के ऊपर चल रहा है, एक फुट ऊपर, कोई कहते थे ऐसा लगता है बाबा का शरीर बिल्कुल रुई का जैसा है, हल्का, किसी को दिखाई देता था बाबा बिल्कुल फरिश्ते हैं, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। तो फरिश्ता अर्थात क्या परिभाषा देते हैं बाबा फरिश्ते की, बोलो, फरिश्ता अर्थात नहीं वही प्रसिद्ध बात जिसका अब ये सुन के माताएं सोचती होंगी हमारे तो रिश्तेदार हजारों, किसी से रिश्ता नहीं, ये कैसे हो सकता है, है कोई दुनिया में ऐसा जिसका किसी से रिश्ता नहीं, लेकिन वरना फरिश्ता है। इसका अर्थ है कि जितने भी हमारे नाते और संबंध हैं वो हमारे लिए बंधन न बन गए हों, वो हमारी बुद्धि को खींच न रहे हों, रिश्ते तो हमारे रहेंगे, हम उन्हें छोड़ के थोड़ा ही भाग सकते हैं। माताओं को ये संकल्प आता है, मुझे बताती हैं कि हमें चार बच्चे, अब किसी से रिश्ता नहीं, ये तो कैसे हो, छोड़ दें उन्हें या क्या करें, छोड़ने की बात नहीं, रिश्तों को निभाना है, लेकिन बंधन मुक्त रहकर, आत्मिक भाव में रहकर। देखो फरिश्ता जो शब्द है, इस शब्द के बारे में आप विचार करें, बहनें भी फरिश्ता बनेंगी और भाई भी। बहनों के लिए फरिश्ती नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि जो योगी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए वही फरिश्ते हैं, जिनकी दृष्टि में आत्मिक भाव समा गया, जो स्त्री पुरुष के भान से ऊपर उठ गए वे फरिश्ते हैं। तो किसी से रिश्ता नहीं, अर्थात कोई रिश्ता नाता हमें खींच न रहा हो। बिल्कुल सिंपल भाषा समझ लें फरिश्ते की, धरती से एक फुट ऊपर चलते हैं फरिश्ते, ये प्रसिद्ध है, फरिश्ते धरती से एक फुट ऊपर चलते हैं, देवताओं की परछाई धरती पर नहीं पड़ती, ये फरिश्तों के लिए ही गायन है। एक फुट ऊंचे रहने का अर्थ है बुद्धि इस संसार से परे है। हम संसार की स्मृतियों से, संसार के प्रभाव से, आकर्षण से जब परे हैं, चाहे हम योगयुक्त हैं, चाहे हम स्वमान में हैं, चाहे हम बहुत अच्छे गहन चिंतन में हैं, तब हम फरिश्ते हैं। इस संसार के चिंतन से परे कर्म हम कर रहे हैं, कर्म के चिंतन से, कर्म के प्रभाव से परे हैं। अब कर्म का चिंतन भी करना होता है, कोई डॉक्टर है उसे चिंतन होगा, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं। कर्म पूरा हुआ और जैसे हमने कुछ नहीं किया, यह है हमारी फरिश्ते की स्थिति। चाहे हम बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं अभ्यास करता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो क्या ये भी फरिश्ता स्वरूप है? यस, ये फरिश्ता स्वरूप हो गए ना। हम इस संसार की कॉन्शियसनेस से ऊपर हैं, हायर कॉन्शियसनेस में है, एक बहुत ऊंची स्मृति में है। तो फरिश्ते के लिए हम ये कुछ चीजें पक्की करें, हमें फरिश्ता बनना है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, अशरीरी होने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास और योगयुक्त, चार चीजें हम ले लें। चार साधनाओं में हमें समय व्यतीत करना है। देखिए आत्मिक दृष्टि के लिए हमें समय देने की जरूरत नहीं, हम सारा दिन मनुष्यों को देखते हैं, अटेंशन दे दें कि सबके मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखनी है। ये प्रैक्टिस करते करते ये चीज नेचुरल हो जाएगी। बीच बीच में सारा दिन अशरीरी होने का अभ्यास करते रहें, स्वमान भी आत्मिक स्थिति है और बाबा की याद। तीन बातें हम विशेष रूप से ध्यान देंगे फरिश्ते के लिए। फरिश्ता लाइट हाउस, बहुत हल्का। लाइट हाउस का दूसरा भी अर्थ है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के प्रकाश से भरपूर। दूसरा बहुत बहुत पवित्र। तीसरा पावरफुल। तीन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। एक बार मेरे पास इंटरनेट से निकालकर किसी ने फरिश्ते की 108 पॉइंट भेजी बाइबिल की, चलो अब सभी बिल्कुल अपने को फरिश्ता देखें, मैं आत्मा लाइट के शरीर में। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
फरिश्ते के बारे में मैं दो चीजें आपको और कहूं, फिर हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। फरिश्तेपन के अच्छे अनुभवों के लिए दूसरों को फरिश्ता देखना, जैसे बाबा ने कल कहा, हर ब्राह्मण फरिश्ता दिखाई दे। ऐसा समय आएगा जब हमारे ब्राह्मण परिवार में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलेगी, सभी सब कुछ व्यर्थ छोड़कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ की तरफ चलेंगे। ये तब होगा जब वैराग्य आएगा, और वैराग्य के लिए बाबा के पास कुछ प्लानिंग है, अवश्य है प्लानिंग। अब तो आ नहीं रहा, राग बढ़ता जा रहा है, लेकिन राग से तो योगी बन नहीं पाएंगे। वैराग्य की परम आवश्यकता है। बाबा देख रहा है मेरे बच्चे तो मस्त होते जा रहे हैं, इसलिए वैराग्य के लिए कुछ प्लानिंग है उसके पास, दिलाएगा। हमने वैराग्य का स्वरूप देखा है बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार में, जब बाबा अव्यक्त हुए, वो वैराग्य का स्वरूप जिसने अनेकों को उस समय योगी बना दिया था, वो फिर आएगा। तो एक बात, जैसे आत्मिक दृष्टि है वैसे ही फरिश्ता स्वरूप देखना। आप कहीं भी बैठ कर एक दो बार जो भी रास्ते से आ जा रहे हैं उनके पीछे फरिश्ता स्वरूप देखना, खड़ा हुआ थोड़ा ऊपर, फरिश्ता स्वरूप हर एक का, डबल स्वरूप, नीचे स्थूल ऊपर को थोड़ा सा फरिश्ता, बहुत गुड फीलिंग होगी। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, उसका तुरंत इफेक्ट रिवर्स होता है हम पर। हम आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक स्थिति सहज बनने लगती है, हम फरिश्ते स्वरूप से देखेंगे तो फरिश्ता स्थिति सहज बनेगी। इसका एक इंटरेस्टिंग स्वरूप मैं आपको याद दिला दूं, दो साल पहले की बात। एक तो हमें ये अभ्यास करना, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं और मेरे अंग अंग से लाइट फैल रही है, किरणें। याद करें आप, अब से दो साल पहले अव्यक्त बाबा ने मुरली चलाते हुए कहा कि आज वतन में बाप ने क्या किया, सुनाते हैं। तीन एडवांस पार्टी की आत्माएं इमर्ज हुई, दादी दीदी और मामा। बाबा ने हाथ में रंग बिरंगे हीरे लिए और उनका पाउडर बनाया। बाबा के लिए हीरो का पाउडर बनाना सहज काम है ना, यहाँ दुनिया में बनाना पड़े तो लंबी चौड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। बाबा ने तो ऐसे दबाया और हीरो का पाउडर बन गया रंग बिरंगा, और सबके ऊपर छिड़क दिया, तीनों के ऊपर, और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, अपने फरिश्ते स्वरूप को ऐसा देखें, मैं चमकती हुई मणि, नीचे प्रकाश का शरीर जिससे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। और प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बना लें, बाबा कहा करते हैं, ये दोनों ड्रेस हैं तुम्हारी, फरिश्ते की और देवताई ड्रेस शरीर। जैसे कल बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, ऐसे ही बाबा कहते हैं फरिश्ता सो देवता। तो ऐसा अभ्यास करें, इंटरेस्टिंग बना दें इसको, गेम बना दें, इधर मैं ब्राह्मण, इधर मेरी फरिश्ता ड्रेस, इधर मेरी देवताई ड्रेस। मैं आत्मा इस शरीर से निकली, फरिश्ते में प्रवेश कर लिया, वहां से निकली देवताई ड्रेस पहन ली, उसको छोड़ा ब्राह्मण तन में आ गई, उसको छोड़ा फरिश्ते की ड्रेस पहन ली। तीनों खड़ा कर लें, गेम करें, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसे एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। कभी ऐसा अभ्यास कर लें, मैं फरिश्ता आकाश में हूं, कभी ऐसा अभ्यास कर लें, मैं फरिश्ता हॉस्पिटल में जो बहुत सारे रोगी दुखी हैं उनके बीच में खड़ा हूं, वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ, उन सबको सुख दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ। ऐसे इसको इंटरेस्टिंग रूप देंगे। प्लानिंग करेंगे सभी कल से, आज प्लानिंग करें कि मुझे फरिश्तेपन का अभ्यास इतने बार जरूर करना है, 25 से ज्यादा। कैसे? सवेरे उठकर 5 बार करेंगे, मुरली के समय 5 बार करेंगे, जब भी पानी पिएंगे, भोजन करेंगे, दूध चाय पिएंगे, एक एक बार अभ्यास करेंगे, घूमेंगे, सबको घूमना भी तो है, देखो किचन से आपको अपने कमरे तक जाना है, क्लास तक आना है, कोई बाहर भी घूमेंगे, जब हम चलेंगे तो अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। शाम को सोने से पहले फिर 5-7 बार करके सोएंगे, एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे, बहुत अच्छी ड्रिल है, इससे आपको बहुत आनंद आएगा। मैं फरिश्ता इस शरीर से निकलता हूँ धीरे धीरे, अपने को निकलता हुआ देखे बाहर, ऊपर आ गए और धीरे धीरे चलने लगे ऊपर की ओर, पहुंच गए सूक्ष्म लोक, सामने बाप दादा को फरिश्ते रूप में देखें, बहुत क्लियर। जितना क्लियर विजन हमारा होगा, यानी बाप दादा हमें बहुत क्लियर दिखने लगे, दिखते हैं या नहीं, दिख देखना बिल्कुल क्लियर, सूक्ष्म वतन में खड़े हैं, उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, पहुंच गए हम उनके पास, बाबा को हाथ मिलाओ, बाबा को गले लगो, एक मिलन करें, फिर वापस मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूँ और इस शरीर में प्रवेश कर लेता हूँ, फिर यहाँ से निकल के चले ऊपर, बाबा से मिले, सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ा, फिर परम धाम में गए, शिव बाबा को टच किया, फिर नीचे उतरे, सूक्ष्म लोक में आए, अपनी ड्रेस पहनी, फिर नीचे आए, इसमें प्रवेश कर लिया। ये रूहानी ड्रिल, फरिश्ते का बहुत सुंदर अभ्यास। इस तरह हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे बहुत अच्छी तरह। पसंद है? पसंद है सभी को? हमें बहुत लाइट रहना है। दो अच्छी धारणाओं की संकल्प कर लें, दो सुंदर धारणाएं, मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है और लाइट रहना, हल्का, भारीपन नहीं। फरिश्ते भारी नहीं होते, फरिश्ते बहुत हल्के हैं, बंधन मुक्त हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत पावरफुल हैं, सबके स्नेही हैं, सबके हैं, सबके। फरिश्ता सबका होता है। मैं आपको सुना रहा था कि मुझे बाइबिल की 108 पॉइंट भेजी फरिश्तों की, मैंने वो रखी भी थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई मेरी, होंगी भी कहीं, तो उसमें से मैंने 10-12 निकाल के ज्ञानामृत में भी लिखी थी कि फरिश्ते कैसे पावरफुल होते हैं, वो दूसरों के रक्षक होते हैं, वो दूसरों के मददगार होते हैं, वो निर्भय होते हैं, उनका चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ होता है, वो बहुत पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। ये सब धारणाएं जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, उनका उसमें फरिश्तों के रूप से वर्णन था। तो हम दो धारणाओं पर विशेष ध्यान देंगे, व्यर्थ से मुक्त और हल्के। देखिए, व्यर्थ से मुक्त होना कहने के लिए तो बड़ा सहज है, लेकिन हम सब जानते हैं ये भी हमारी लंबी साधना है, पर एक संकल्प तो हम रख सकते हैं ना, नहीं सोचना है। कोई भी तरह के संकल्प हमें चलते हैं, हम संकल्प कर दें, नहीं सोचना है, ये हमारा काम ही नहीं है। दूसरों का चिंतन करना हमारी ड्यूटी थोड़ा ही है। जानकी दादी कहा करती थी, शुरू में वो यहाँ रहती थी, जब बाबा व्यक्त हुए तो कहती थी, दूसरे के अवगुण देखते हैं ना, तो वो कहती थी, अवगुण दूसरों के, मुसीबत मेरी। है ना ये बात? हम अपनी खुशी खो रहे, बिना मतलब भारी हो रहे हैं, वो अवगुण वाले खुश रहते हैं, हम देखने वाले परेशान रहते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उनकी बात, मैंने भी अपनाया इसको, बहुत अच्छा लगा मुझे यही बात। पर चिंतन करने की मुझे याद आ गया, यही दादी क्लास करा रही थी, बड़ी दादी, तो पर चिंतन पर बात चल रही थी, तो सबसे पूछ रही थी पर चिंतन करते हैं, हाथ उठाओ जो जो करते हैं। तो आप जानते हैं इसमें कोई हाथ तो नहीं उठाता, हालांकि करते तो सभी हैं। मेरे से पूछा, तुम पर चिंतन करते हो? तो मेरे मुख से अचानक निकल गया कि दादी ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बड़ी खुश हुई दादी। तो मैंने फिर मेरे से पूछा, क्या कहा तुमने? तो मैंने कहा, देखो दादी, हम साइंस के स्टूडेंट थे तो हम कभी हिस्ट्री की किताब लेके थोड़ा ही पढ़ते थे। पढ़ता है कोई कि हिस्ट्री की किताबों में क्या, कॉमर्स वालों को क्या पढ़ाया जा रहा, देख तो आऊं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर हम ध्यान देते हैं ना। तो पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, समझ लेना ऐसे थोड़ा सा, तो बहुत बल मिल जाएगा। सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना, पसंद है तो व्यर्थ। अब हमें रहना है बहुत हल्का। हल्के रहने के लिए मैं आपको तीन बातें याद दिलाऊं। हल्का वो मनुष्य रहता है जिसको अपनी शक्तियों में विश्वास होता है, जिसको अपनी शक्तियों का पता होता है। कोई व्यक्ति जो अपने कार्य में एक्सपर्ट है, खेल की तरह काम करता है ना, उसको परेशानी नहीं होती। हम भी अपनी शक्तियों को पहचाने। जितनी बातें संसार की हैं वो हमारी शक्तियों की भेंट में बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी। हम ये अपने को समझा दें, ये बातें बहुत छोटी हैं, इनसे क्या भारी होना। बाबा कहा करते थे, यदि शेर को एक चींटी परेशान कर दे तो क्या कहेंगे। तो हम अपने को संकल्प दे, एक छोटी सी बात ने मुझ शेर को परेशान कर दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान को, महावीर महावीरनियों को परेशान कर दिया, हो ही नहीं सकता। अपनी शक्तियों की स्मृति में रहकर अपने को बहुत हल्का रखेंगे। पसंद है? कौन हमें साथ दे रहा है? दूसरी बात, किसने हमारे सिर पर हाथ रख दिया है, किसने अपना हमारा हाथ पकड़ लिया है, कौन हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है। चिंतन में लाएं इसको, नशे में लाएं, तो बहुत सारी बातें हल्की हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी बात भी आ जाए, भगवान साथ है, हल्का। इसकी प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, या नहीं। आने वाला समय नाजुक होगा, रोज बाबा भूलता नहीं हर मुरली में ये कहना, अचानक होगा, समय नाजुक होता जा रहा है। आज भी सुना जापान में भूकंप आया है, अच्छे स्केल का है ना, 7 से ज्यादा का, तो एक डर तो पैदा हो ही जाता है, थोड़ा नुकसान भी होता है लेकिन डर पैदा हो जाता है। तो हमारे साथ भगवान है, आग लगेगी लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास हो, हम अभी से उसके साथ के द्वारा हल्के, निश्चिंत और निर्भय रहने की प्रैक्टिस बढ़ाते चलें, तो विनाश काल में मस्त रहेंगे। सब कुछ नष्ट हो रहा, हो जाने दो, मस्त रहेंगे। नहीं तो रोएंगे, हाय मेरा चला गया, इतनी मुश्किल से तो कमाया था, सब चला गया, बाबा ने मदद ही नहीं की। ये होगा फिर। तीसरी बात, ड्रामा के ज्ञान से अपने को हल्का करें। ड्रामा का सुंदर ज्ञान दिया है ना, सबका अपना अपना भाग्य है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब कुछ निश्चित है। मुझे बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको क्लासेज में सुनाता ही रहता हूँ, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। छोटी सी बात, कुछ समय पहले साकार मुरली में आया था ना, ब्रह्मा बाबा को संकल्प चल रहा है, बहुत बच्चे आने वाले हैं, कहाँ रखेंगे। तो सोच रहे थे पास वाला मकान किराए पे ले लें। जब हम इधर से चढ़ते हैं ना तो लेफ्ट साइड में एक व्हाइट सा मकान मिलता है, वो बाबा पूरे सीजन के लिए किराए पे ले लेते थे। तो बाबा को विचार चल रहा है कहाँ बच्चों को रखेंगे। शिव बाबा ने क्या उत्तर दिया, बच्चे वेट एंड सी, वेट एंड सी, समझते ना इंग्लिश, जरा धीरज रखो, इंतजार करो और देखो। और फिर उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे अंदर चला गया था। शिव बाबा बोले, जैसे कल्प पहले इंतजाम हुआ था वैसे ही फिर हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है निसंकल्प रहने की। तब मुझे एकदम ख्याल आया कि निसंकल्प रहना सीखना हो तो शिव बाबा से ही सीखो। तो कार्य करना भी है और निश्चिंत भी रहना है। तो ड्रामा के ज्ञान से हम अपने को हल्का करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। आप सभी एक प्लानिंग करो पूरे साल की। मैं लास्ट में बता दूं आपको एक बहुत अच्छी बात। 12 मास है हमारे पास। 12 मास के लिए 12 धारणाएं आप लिख लें सुंदर, जो अच्छी धारणाएं ना हमारी बड़ी, जैसे अनासक्त वृत्ति, साक्षी भाव, न्यारा और प्यारापन, सभी के लिए शुभ भावनाएं, ये हमारी टॉप मोस्ट धारणाएं हैं। सरलता, सहनशीलता, गुण तो हैं ही बहुत सारे, पर धारणाएं, इन सब को लिख लें, रोज इन पे ध्यान दिया करें, क्योंकि हमें संपन्न भी बनना है ना और संपूर्ण भी। सभी धारणाओं में संपन्न, सभी खजानों में संपन्न, तो फरिश्ता रूप संपन्न स्वरूप है। आज बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे थे ना, प्योरिटी की पर्सनालिटी, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। जो पवित्र आत्माएं हैं, जो भरपूर आत्माएं हैं, उनकी निशानी होगी, उनकी आंख कहीं भी डूबेगी नहीं। समझते हैं, ये मुहावरा है, कहावत है, कहीं भी आंख न डूबना। कहीं भी उनको कोई लेने की इच्छा, किसी की ओर आकर्षण ये होगा ही नहीं, वो स्वयं में फुल हैं। तो 12 मास के लिए 12 धारणाएं, और जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो 12 मास में अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले जाना, और जो और अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं 8 घंटे नहीं हो सकता, 4 घंटे तक ले जाना। इसकी एक सुंदर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग सभी को स्वयं ही करनी है। ओम शांति। फिर से मैं फरिश्ता। बाबा ने पाउडर डाल दिया हमारे ऊपर भी, और अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ने लगी।